जो हमारे उलमा हैं, जो हमारे हक हैं, क्या ये आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में क्यों इतने कमजोर नजर आते हैं कि दुनिया वाले जो हैं वो आगे बढ़ते हैं और शोर शोर करके दुनिया पे असरअंदाज होते हैं, और हमारे उलमा, हमारे हक के बात करने वाले वो इतनी कमजोर आवाज दे रहे हैं कि लोग जो है उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और हमारी तरफ से थोड़ी सी सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर देते हैं बजाय सोचने समझने के। इसमें थोड़ी यह है कि कहाँ ये कमजोरी नजर आ रही है कि हमारी नौजवान नस्ल इस्लाम में दाखिल होते हुए भी हमसे दूर होने करने करने में वो कामयाब भी होते हैं और उनको आसानी भी है और हमें मुश्किल पैदा हो रही हैं, ये इस पर थोड़ी सी रोशनी तो मेहरबानी होगी। थैंक यू जी।
जी के
बहुत बहुत अच्छी तरफ इन्होंने इशारा किया। आपका सवाल भी मेरे जहन में है, लेकिन मैं चाहूंगा पहले थोड़ा सा इनकी तरफ इशारा करूँ सवाल की तरफ, कि बहुत अच्छा इशारा किया कि वाकई होगी इसको अगर ऊपर की तरह थोड़ी सी बड़ी सतह से देखा जाए तो ये बिल्कुल ऐसी है, एक तरफ शैतान भी बुला रहा है और एक तरफ खुदावंद मुताल
सही
भी
बात है,
ये बुला रहा है, और
बिल्कुल।
शैतान ने भी एक माहौल बनाया है, शैतान ने भी एक जाल बनाया और खुदावंद मुताल ने हिदायत का सामान किया है। लेकिन लोगों की असल में फितरत और लोगों का नफ्स जो है वो ज्यादातर ऐसी चीजों की तरफ जाते हैं जो उनके लिए जिसमें लज्जत हो, आसानियां हो, जाहिरी तौर पे, यानी मैं बिल्कुल साधारण बात में कहूँ, जिसका पैकेट बहुत अच्छा हो तो लोग उसको पसंद करते हैं, जिसका जाहिर बहुत अच्छा हो लोग उसके उसकी तरफ पसंद करते हैं। लेकिन अगर लोगों को बसीरत दी जाए, लोगों को बेदार किया जाए, लोगों को आगाह किया जाए, जो मासूमी ने किया, तो लोग हमेशा अंदर बातें भी देखेंगे, फकत जाहिर को देख के मरूब नहीं होंगे। तो उन्होंने कोशिश हमेशा ये की कि इस्लाम के मुकाबले में इस्लाम लेके आया जाए, इमामत का मुकाबला खिलाफत के जरिए किया जाए, इमामत के मुकाबले के मुतबादल निजामों को लेके आया जाए। आज हम जब देख रहे हैं साल भी दिया, जब देखें वाकई सऊदी अरब की हालत देखें कि जो अब आज वो हुकूमत अपनी आखिरी सांसें ले रही है, लेकिन हम देखें कि वाकई दुश्मनों ने क्यों ये काम किया कि इस्लाम के एक मुकद्दस जगह यानी हिजाज के अंदर आले सऊद को बिठाया ले जाके, ताकि वो मरकज क्या कहते हैं अपनी हकीकी जगह से हट जाए, और उधर दूसरे मुकद्दस मुकाम यानी बैतुल मुकद्दस के अंदर, मस्जिद कुद्स के अंदर, वहां पे यहूदियों को जगह दी। ये सब हमें पता है कि दुश्मन की पूरी साजिश इन 100 सालों के अंदर रही है, खासतौर पर जंग जहानी अव्वल उदुगुन से पहले इसकी आमादगी उसके पास 10वीं सदी के अंदर ये काम अंजाम पाया। तो हम देखते हैं उसके काम यही था कि हकीकी इस्लाम के चेहरे के मुकाबले में एक ऐसा चेहरा लाया जाए कि जो दुनियादार भी हो जाहिरी तौर पे और अपने आप को खादिमैन हरमैन भी कह रहा हो, लेकिन हम देखते हैं कि वो हमेशा जालिम और जाबिरों के साथ ही नजर आते हैं। लेकिन खुदा का करना क्या हुआ, मकरू व मकर अल्लाह, लेकिन खुदा उनके मुताबिक आज भी आज देखिए कि उन्होंने जितनी साजिशें करी, बीबी जैनब के हरम के हवाले से साजिशें करी, मरजियत सामने आई, करबला काजमैन सामरा के हवाले से साजिशें करी, मरजियत मैदान में आई, आयतुल्लाह सिस्तानी का वो मारूफ फतवा जिसने इस हरम को बचाया, करबला को बचाया, जिसने मुकद्दस मकामात को बचाया। इसी तरीके से आयतुल्लाह खामेनेई हाफिज़ुल्लाह की इस पूरी क़यादत ने आप देखिए किस तरीके से आज यमन का भी दिफा हो रहा है, लबनान का भी दिफा हो रहा है, फिलिस्तीन का भी दिफा हो रहा है, शाम का भी दिफा हो रहा है, नाइजीरिया का भी दिफा हो रहा है, और हम देखते हैं इराक के अंदर भी जो कुछ पेश आया, और इस तरह से जो शहादतें अभी हुई करीब के अंदर, और हमने देखा कि एक वहदत की फिजा वहां पर कायम हुई, और इंशाअल्लाह और अरबईन के मौके पे भी हम देखते हैं मर्जी के किरदार को किस तरीके से दुनिया भर के नफरत तशैयों को मुसलमानों को एक हकीकी प्लेटफॉर्म यानी सैयदुश्शोहदा के परचम तले जमा किया जा रहा है। तो मर्जियत का काम ही यही है कि अहले बैत से जोड़ दे, ये अपने पास रोकते ही नहीं है, इनका काम और वजीफा ही यही है कि अहले बैत और उम्मत के दरमियान ऐसा ब्रिज बने जो उम्मत को सही डायरेक्शन पे रखे। तो जितना जितना भी कोशिशें गलत इस्लाम और इस्लाम के गलत चेहरे की तरफ से आई, उन कोशिशों को आज नाकाम बना दिया गया। आज आलम इस्लाम की अगर हम देखें क़यादत का परचम जो है वो आज हमारी मर्जियत के हाथ में है, और आज दुश्मन को भी सबसे ज्यादा खतरा इन्हीं से
चाहिए कि जिन पर हमें जिनकी तरफ हम रुजू करते हैं और क्यों इनमें डिफरेंस पाया जाता है इनके जो फतवात हैं।
सबसे पहले तो ये कि ये सिफात जो हैं वो फुकहा के हवाले से हमारे पास खुद इमाम मासूम ने अपनी जिंदगी के अंदर फुकहा की इन सिफात की तरफ हमें मुतवज्जे किया कि ये जिनके लिए हम आप इनकी तकलीफ करें, इनकी तरफ रुजू करें, तो इनके बारे में बहुत अच्छी हदीस इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की हमारे पास मौजूद है कि फरमाते हैं कि मन काना मिनल फुकहा साइनन लिनफ्सिही हाफिजन लिदीनिही मुखालिफन लिहवाहु, और आगे फरमाते हैं कि अन्य अम्र मौलाओ, ये बहुत मुहिम है, फरमाते हैं कि जो भी फुकहा में से यानी सबसे पहले वो फकीह हो दीन का, यानी दीन की सादा मालूमात ना रखता हो, मसलन बिल्कुल मुझ जैसे बंदे हकीक की तरह बिल्कुल एक दीनी तालिबे इल्म की तरह, बल्कि नहीं, फकाहत के दर्जे तक दीन की मालूमात रखता हो, फुकहा में से हो, अगर साइन नफ्स ही अपने नफ्स की हिफाजत करने वाला हो, हाफिजन दीन ही इस्लाम का पूरा मुहाफिज हो, पूरे इस्लाम का मुहाफिज हो, यानी इबादत का भी मुहाफिज हो, सियासत का भी मुहाफिज हो, इज्तमाहियत का भी मुहाफिज हो, इस्लाम की मुख्तलिफ जामे हिफाजत करना जानता हो, और अपने हवाओ हवस का शिकार वो गुलाम ना हो, अपनी हवाओ हवस का के पीछे चलने वाला ना हो, मुती अल्ले अम्र मौला हो, यानी अपने इमाम मासूम का और अपने इमाम का मुती हो। इनके बारे में इमाम फरमाते हैं कि फल अवाम युकद्दिदुहु, बस अवाम के लिए जरूरी है इनकी तकलीद। आगे इमाम ने यह भी फरमाया कि ये सारे ऐसे नहीं होंगे, सबके बारे में सब ऐसे नहीं होते, इमाम ने ये भी बोला था, यानी कि इनमें से बाज ऐसे हैं कि जो ये सारी सिफात रखते हैं, ला जमी ओहम, सारे ऐसे नहीं होंगे, बस ये हमारे पास मौजूद है ऐसी सिफात इमाम ने दे दी कि जिससे गैबत कुबरा में खास नाइब थे और गैबत कुबरा में नाइबीन आम का सिलसिला इन सिफात थे, जो कि खुद ये बुजुर्ग फुकहा और उलमा ही तशखीस देते हैं कि कौन मरजियत के काबिल है कि जिसकी तकलीद की जा सकती है, जिसके पीछे चला जा सकता है, और हमारे पास ऐसे उलमा पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है। और ये जो इख्तलाफ पाया जाता है ये बहुत तबीयी है, ये बिल्कुल ऐसी है कि जैसे क्योंकि ये गैर मासूम है, ये आर्जी तौर पे इमाम ने वो बनाया, ये हमारे लिए वो आइडियल निजाम नहीं है, आइडियल निजाम वो इमाम मासूम का निजाम है, लेकिन गैबत कुबरा में आर्जी तौर पे हम कहते हैं कि बेस्ट अवेलेबल सिस्टम है हमारे पास मर्जियत, लेकिन ना कि वो आइडियल, आइडियल वही इमाम मासूम का है, लेकिन क्योंकि ये गैर मासूम है इनसे गलतियां हो सकती हैं। इमाम की हदीस है, अगर ये इस फकाहत के अंदर और इश्तिहाद के अंदर अगर कहीं इश्तबा करते हैं, गलती करते हैं, तो इनके लिए एक सवाब है, और अगर ये सही बात करते हैं तुमसे तो इनके लिए दो सवाब हैं, दो दर्जे इनके लिए खैर है, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी है तुम इनकी तकलीद करो। और वो बिल्कुल ऐसे जैसे दो डॉक्टरों में भी इख्तलाफ होते हैं, दो टेक्नीशियंस में भी होते हैं, दो इंजीनियर्स में भी होते हैं, जो कि गैर मासूम है, भारत तहकीक का सिलसिला जारी व सारी है।
जी चलो, टाइम बहुत कम है, मैं चाहती हूँ कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक तो क्वेश्चन आपसे पूछती जाऊँ कि एक सवाल ये अक्सर होता है कि मराजे और मुजतहदीन जो हैं वो ज़्यादातर ईरानी हैं या इराकी हैं, तो दूसरे ममालिक में इनकी पैरवी करना कैसा है?
हाँ बिल्कुल, ये सवाल यहाँ अक्सर पाकिस्तान में भी किया जाता है कि भाई ये तो सारे मर्जे जो हैं वो ये तो ईरानी हैं, तो हमें एक ईरानी मुश्तहिद की तकलीद में पाकिस्तानी क्यों कैसे करूँ, या मैं हिंदुस्तानी कैसे करूँ? तो इसका बेहतरीन जवाब यही है कि देखिए ये सब चीज़ें ये दीन से मुतालिक हैं और ये दीन का सरमाया है, बिल्कुल ऐसी है कि जैसे इमाम रजा का हरम जो है वो है ईरान में लेकिन तमाम मुस्लिम से मुतालिक है, नबी अकरम का रोज़ा मदीना में है लेकिन वो काबतुल्ला मक्का में है लेकिन तमाम मुस्लिम से मुतालिक है, तो ये चीजें मदनी नहीं हो जाती, कूफी नहीं हो जाती है, अमीर अल मोमिनीन कूफे में थे, तमाम मुस्लिम के सिर्फ कूफे वालों के लिए नहीं है, बस ये कि इमामत और विलायत को खुदा बंदे मुताल कहाँ करार दे, कभी मशहद में करार दे रहे, कभी खुरासान में करार दे रहे, कभी मदीने में करार दे रहे, कभी कूफे में करार दे रहे, लेकिन वो कूफे की हद तक महदूद नहीं है उनकी इमामत, खुद इमाम मासूम मसलन कूफे में होता था या मदीने में या मक्का में या मसलन खुरासान में, लेकिन वहाँ यहाँ पर अगर हम देखते हैं गैर मासूम फकीह वहाँ पे मौजूद है तो वो दीन का फकीह है, असल में हम भी जो रुजू करते हैं वो की तरफ रुजू कर रहे हैं, यानी मर्जियत भी जो है वो असल में फकाहत और अदालत की पैरवी कर रहे हैं हम, और अदालत और फकाहत जो है वो किसी खित्ते की नहीं होती बल्कि दीन की होती है, तो इनकी तरफ रुजू करना दीन की तरफ रुजू है, लेकिन मतलब ईरान की कोई शहर है मतलब तख्त जमशेद ईरानियों का है, उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, तो जैसे हरम इमाम रजा सबका है इसी तरह से फकीह मुश्तहिद और मर्जी भी सबके।
जी एक बिल्कुल आखिरी सवाल, बिल्कुल हमारे पास 2 मिनट सिर्फ रह गए हैं, कि मुझे ये बता दीजिएगा कि पाकिस्तान में हमें ऐसी क़यादत जो है वो शहीद आरिफ हुसैनी के बाद क्यों नसीब नहीं हुई, और क्यों इसी वजह से केओस रहता है हमेशा पाकिस्तान में, इसकी क्या वजह है, और क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसी क़यादत हमें जल्द नसीब होगी?
बिल्कुल, एक तो हमें ये चीज़ देखनी चाहिए वाकई में इस वक्त जिस तरह नाइजीरिया में, लबनान में, इराक में, ईरान में, शाम में, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो अच्छी क़यादतें इस वक्त मौजूद हैं तो वो उलमा ही लीड कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं और कौमों को लेके जा रहे हैं। हमारे पास शहीद आरिफ एक आखिरी कड़ी थी क़यादत की, जो एक मुनासिब क़यादत थी जिसको वक्त की मर्जियत की तरफ से तायद हासिल थी, लेकिन ये क्यों दोबारा नहीं हुआ, वो कौम की नाशुक्री की वजह से हुआ, शहीद आरिफ की कदरदानी नहीं की गई, शहीद आरिफ की कदर नहीं पहचानी गई, इस वजह से ऐसा हुआ। और उम्मीद है या नहीं है, वाकई उम्मीद है, क्योंकि चाहे तो इमामत को विलायत तो कहीं भी करार दे सकता है, और खुदा से दुआ भी करें, दवा भी करें। दवा क्या है, जो कौम भी अपने घर का सबसे अच्छा बच्चा दीन को देगी, जिसकी तरफ भाई भी इशारा कर रहे थे कि अपना सबसे कीमती बच्चा हमें दीन को देना चाहिए, हम चाहते हैं उसको डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, वो भी बनना चाहिए, लेकिन हम जब तक अपने घर का सबसे अच्छा बच्चा दीन को नहीं देंगे उस कौम को अच्छी क़यादत नहीं मिलेगी। ये घर के सबसे अच्छे बच्चे थे जो आज इन ममालिक के अंदर क़यादतें कर रहे हैं, और इन माँ बाप ने अपने घर का सबसे अच्छा बच्चा दीन को दिया। तो जैसे ही जो कौम भी अपने घर का सबसे अच्छा बच्चा दीन देगी, उसमें शहीद आरिफ जैसे क़यादत दोबारा कर सकते।
इंशाल्लाह हम यही उम्मीद करते हैं कि दोबारा से हमें जो है वो क़यादत नसीब हो, पाकिस्तान को भी जल्द अज़ जल्द जो हमारी सही रिप्रेजेंटेशन कर सके। कृपया मैं आपकी बहुत मशगूल और ममनून हूँ, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत सारे सवाल अभी ऐसे थे जो आपसे पूछना बाकी थे और फ़ोन कॉल्स भी मसलसल आ रही थी, लेकिन चूंकि टाइम की कमी की वजह से जो है हमें ज़ाहिर है कि प्रोग्राम ख़त्म करना होगा, लेकिन इंशाल्लाह आपको आइंदा आने वाले प्रोग्राम में भी ज़हमत देते रहेंगे। आपके बहुत मशगूल और ममनून हैं।
बहुत शुक्रिया तमाम।